मुख्तसर सही बुखारी में किताबु ज़कात ही को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 485, ज़कात का बयान और हदीस नंबर है 742, 742। टॉपिक है या बाप है 30। बाबा लैसा अल मुस्लिमी फी फरसी ही सदकतुन, मुसलमान के लिए अपने घोड़े की ज़कात देना ज़रूरी नहीं। घोड़े को आप क्या कह लीजिए? गाड़ी, यानी वो जानवर या सवारी जो आप काम में ला रहे हैं डेली यूज़ में, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा अलल मुस्लिमी फी फरसिही व गुलामिही सदकतुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर इसके खिदमतगार गुलाम और इसकी सवारी के घोड़े पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सही मौक़िफ़ भी यही है कि घोड़ों और ग़ुलामों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, अगरचे वो बग़र्ज़े तिजारत ही क्यों ना रखे हों, क्योंकि नबी सल्लम ने इनकी तिजारत के मुतल्लिक कोई हदीस मरवी नहीं, यानी आपसे कोई हदीस मरवी नहीं है। सिंपल बात यह है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल में लाते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। आप कह लीजिए अब गाड़ी है तो वो महंगी, लेकिन अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो पैसा आपका यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा आप उसके ऊपर ज़कात नहीं देंगे। अस सदकतु अलल यतामा, यतीमों पर सदका करना। अन अबी सईदिन अल खुदरी रदी अल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा ज़ात यौमिन अलल मिंबरी व जलसना हौलहु फकाला इन्नी मिम्मा अखाफु अलैकुम मिन बादी मा युफ्तहु अलैकुम मिन ज़हरति दुनिया व ज़ीनतहा। فقال رجل يا رسول الله او ياتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شانك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا انه ينزل عليه الوحي قال مسح عنه رخداء فقال اين السائل وكانه حمده فقال انه لا ياتي الخير بالشر وان مما ينبت الربيع يقتل او يلم الا اكلت الخضراء اكلت حتى اذا امتدت خاضرتها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال حديرة الخلوة فنيم صاحب المسلم ما آتى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة। कितने अरबी के नए लफ्ज़ आपको हदीस में से मिल सकते हैं, आप थोड़ा सा अगर गौर करके हाईलाइट किया करें कि किस लफ्ज़ का क्या तर्जमा होगा। यतीमों पर सदका करना। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर रौनक फरमा हुए, यानी बैठे, जब हम लोग आपके गिर्द बैठ गए तो आपने फरमाया मैं अपने बाद तुम्हारे हक में दुनिया की शादाबी और इसकी ज़ेबाइश से डरता हूँ, जिसका दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, यानी मुराद है कि मेरी उम्मत के पास माल बहुत हो जाएगा। इस पर एक शख्स ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, क्या अच्छी चीज़ भी बुराई पैदा करेगी? यानी माल तो अच्छा होता है, तो क्या इससे कोई शर पैदा होगा? आप खामोश हो गए। इस शख्स से कहा गया क्या मामला है, तू लब कुशाई किए जा रहा है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे गुफ्तगू नहीं फरमाते। इसके बाद हमने देखा कि आप पर वही आ रही है। रावी कहता है कि फिर आपने चेहरा मुबारक से पसीना साफ किया और फरमाया साइल कहाँ है, गोया आपने इसकी तहसीन फरमाई यानी तारीफ की। फिर फरमाया बात यह है कि अच्छी चीज़ बुराई तो पैदा नहीं करती, यानी माल बुरा तो नहीं होता, लेकिन फसलें रबी ऐसी घास भी पैदा करती है जो जानवर को मार डालती है। बड़े गौर से सुनिएगा इस मिसाल को, बहुत खूबसूरत तरीके से दुनिया की कसरत का शर हमें दिखाती है ये बात। यानी घास तो वो अच्छी है, लेकिन वो घास खाकर जानवर कभी कभी मर भी जाता है या बीमार करती है, मगर इस सब्जाखोर जानवर को जो यहाँ तक खाए कि इसकी दोनों कोख भर जाएं, फिर वो धूप में आकर लेट जाए और लीद और पेशाब करे और फिर चरने लगे, यानी इतना तो काफ़ी है ना। जानवर के सामने घास रखी तो वो थोड़ा सा खाए फिर उसको हजम कर ले तो ठीक है। बिलाशुबा ये माल भी सरसब्जो शीरी है और मुसलमान का बेहतरीन साथी है, मगर इस वक्त जब इससे मिस्कीन यतीम और मुसाफिर को दिया जाए, यानी अपने माल में दूसरों को शरीक किया जाए, या इस किस्म की कोई और बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, और जो शख्स इस माल को नाहक लेगा वो इस शख्स की तरह होगा जो खाता जाए मगर सैर ही ना हो, पेट ही ना भरे, ऐसा माल कयामत के दिन इसके खिलाफ गवाही देगा। क्या बताया आपने कि दौलत अगरचे अल्लाह की नेमत है और अच्छी चीज़ है, मगर जब बेमौका और गुनाहों में सर्फ होगी तो यही दौलत अजाब का बायस बनेगी। जैसा कि मौसम बहार की हरी भरी घास बड़ी उम्दा नेमत है, मगर जो जानवर हद से ज़्यादा खा जाए तो उसके लिए जहर कातिल है। देखिए रोज़ का खाना ही देख लें, खाना आपको ताकत देता है ना, लेकिन आप खाते ही जाएँ खाते जाएँ, पेट ही ख़राब हो जाए तो खाना नुकसान देगा। तो दुनिया से ज़रूरत का फ़ायदा लेना सेहत देता है, ज़रूरत से बढ़ के जब दुनिया को पकड़ेंगे तो फिर उससे नुकसान होगा। अज़्ज़कात वला ज़ौजी वला ऐतामी फिल हजरी, खामन और जेरे की फालत यतीमों को ज़कात देना। अन ज़ैनबा इमरात इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन रदी अल्लाह अन्हा हदीस हल मुतकद्दिमु करीबन, जी वो खुद ही कह रहे हैं कि हदीसों पर गुजरी है। वकालत फी हाजी रिवायती इन तलक्तु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदतु इमरातन मिन अल अंसारी अल अलबाबी हाजतुहा मिस्लु हाजती फमर अलै नबिलाल फकुलना सलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुजजी अन्नी अन उनफिक अला ज़ौजी व ऐतामिल ली फी हजरी فساله فقال نعم لهاجران اجر القرابه واجر الصدقه। यानी पहले तो उसने डायरेक्ट पूछा था ना, अब हजरत बिलाल के जरिए से पूछा गया। हजरत ज़ैनब जो कि ज़ौजा थी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की, इनकी हदीस 741 गुजरी है। इस तरीक में इसमें इजाफा है कि उन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह के पास गई तो मैंने दरवाजे पर एक अंसारी खातून को पाया जो मेरी तरह की ज़रूरत के लिए आई थी। हज़रत बिलाल जब हमारे पास से गुजरे तो हमने कहा कि तुम रसूलुल्लाह से दरियाफ्त करो क्या मेरे लिए ये काफ़ी है कि मैं अपना माल अपने शोहर और ज़ेरे की फालत यतीमों पे खर्च कर दूं। चुनाचे हज़रत बिलाल के दरियाफ्त करने पर आपने फरमाया हाँ ऐसा कर सकती है, इसे दुगना सवाब मिलेगा, एक किराबतदारी का और दूसरा खैरात देने का। हदीस में जो सदक़े का लफ्ज़ है ये फ़र्ज सदका यानी ज़कात और नफिल सदका दोनों के ऊपर है। सही मौक़िफ़ है कि माल ज़कात अपने खावन और बेटों को और बेटियों का देना जायज़ है बशर्ते कि वो मुख्ताज हो। बात समझ गए, यानी हदीस वही है कि जहाँ ज़रूरत है तो रिश्तेदार को दिया जाएगा। अनुम सलमत रदी अल्लाह उन्हा कालत कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अजरुन अन उनफिकला बनी अबी सलमत इन्नमा हुम बनिया फ़क़ाल अनफ़की अलैहिम फ़लकी अजरुम मा अनफ़क़्ती अलैहिम। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने दरियाफ्त किया अल्लाह के रसूल, अगर मैं हज़रत अबू सलमा के बच्चों पर खर्च करूँ तो क्या मुझे सवाब मिलेगा जबकि वो मेरे ही बेटे हैं, यानी अपने बच्चे। आपने फरमाया तुम इन पर खर्च करो, जो कुछ तुम इन पर खर्च करोगे इसका सवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अब हदीस में ये नहीं है कि उम्मे सलमा इन यतीम बच्चों पर ज़कात से माल दे रही थी, लेकिन इतनी बात मुश्तरक है कि वो खर्च करती थी। तो बहरहाल ये कि रिश्तेदार को देने का अजर है। बाप कौलुल्लाह ताला वफिर रकाबी वलगारमीन वफी सबीलिल्लाह। इरशाद बारी ताला गुलामों को आज़ाद करने में, कर्ज़दारों को निजात दिलाने में और अल्लाह की राह में माल ज़कात खर्च किया जाए। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सदक़ती फ़क़ीला मना इब्नु जमीलिन व खालिद इब्न अल-वलीद व अब्बास इब्नु अब्दुल मुत्तलिब वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यनक़िमु इब्नु जमीलिन इल्ला अन्नहु कान फ़क़ीरन फ़ग़नाहुल्लाहु व रसूलुहु व अम्मा खालिदुन फ़इन्नकुम तज़लिमून खालिदन क़द इहतबसा अदराअहु व तुदहु फ़ी सबीलिल्लाहि व अम्मल अब्बास इब्नु मुत्तलिब फ़अम्मु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हिय अलैहि सदक़तुन व मिस्लुहा माहा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सदका वसूल करने का हुक्म दिया। अर्ज़ किया गया कि इब्ने जमील, ये कौन थी आपको पता है, ज़रा गौर कीजिएगा, खालिद बिन वलीद और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सदका नहीं दिया, यानी इनसे मांगा गया तो नहीं दिया गया। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया इब्ने जमील तो इस वजह से इनकार करता है कि वो तंगदस्त था, अल्लाह और इसके रसूल ने मालदार कर दिया, मगर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर तुम जुल्म करते हो, उन्होंने ज़िरहें और आलात जंग अल्लाह की राह में वक्फ कर रखे हैं। रहे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो वो रसूलुल्लाह के चचा हैं, इनकी ज़कात इन पर सदका है और इसके बराबर और भी मेरी तरफ से होगी। मतलब क्या है? मुस्लिम की रिवायत में आता है कि अब्बास रज़ील्लाहु अन्हु की ज़कात बल्कि इससे दो चंद मैं अदा करूंगा, क्योंकि चचा बाप ही की तरह होता है, इसलिए अपने चचा की तरफ से खुद ज़कात अदा करूंगा। क्या पता चला? वही जो सवाल अक्सर ख़वातीन करती हैं कि हमारे जेवर पे ज़कात अगर शौहर देना चाहें या कोई और दे दे या ससुर दे दें तो अदा हो जाएगी। तो बिल्कुल हो जाएगी। अगर नहीं कोई देगा तो आपको पकड़ होगी, कोई दूसरा देगा तो उसकी तरफ से सदका और आपकी तरफ से फ़र्ज़ हो जाएगी। अल इस्तेफाफ़ु अनिल मसलती, सवाल से बचना। अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह अन्हो, अन्ना नास मिनल अंसारी सालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाताहुम सुम्मा सालूहु फाताहुम सुम्मा सालूहु फाताहुम हत्ता नफिदा मा इंदहु फकाला मा यकून इंदी मिन खैरिन फलन अद्दखिरहु अनकुम वमन यस्ताफिफ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرَ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ آتًا خَيْرًا وَأَوْسَى مِنَ الصَّبْرِ। अल्लाह करे इस हदीस पे हमें भी यकीन आ जाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अंसार में से चंद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल का सवाल किया तो आपने दे दिया, उन्होंने दोबारा मांगा तो आपने फिर दे दिया, यहाँ तक कि आपके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। बिलाखिर आपने फरमाया, मेरे पास जो माल होगा मैं इसे तुम लोगों से बचाकर नहीं रखूंगा, लेकिन याद रखो जो शख्स सवाल करने से बचेगा अल्लाह ताला इसे फ़क्र व फाका से बचाएगा, और जो शख्स दुनिया के माल से बेनियाज रहेगा अल्लाह ताला इसे गनी कर देगा, और जो शख्स सब्र करेगा अल्लाह उसे साबिर बना देगा, और किसी शख्स को सब्र से बेहतर कोई वसीतर नेमत नहीं दी गई। अब आप देखिए इस हदीस में सवाल ना करने के तीन दर्जे हैं ना। पहला क्या कि इंसान सवाल से परहेज करे लेकिन इस्तेगना को जाहिर ना करें, यानी बताए भी ना कि मुझे ज़रूरत है। दूसरा ये कि मखलूक से बेनियाज रहे, अलबत्ता अगर इसे कुछ दे दिया जाए तो बतीबे खातिर कबूल करे, यानी बग़ैर मांगे कोई दे दे तो ले ले। और तीसरा ये कि देने के बावजूद इसे कबूल ना करे। यह आखिरी दर्जा सब्र व सुबात का है जो तमाम मकारम अखलाक अपने अंदर समेटे हुए। बात वाज़े, यानी कोई खुद दे दे तो ले सकते हैं, सवाल ना करें, कोई दे दे ले सकते हैं, लेकिन ले भी सकते हैं फिर भी ना लें कि नहीं मुझे अल्लाह ताला खुद ही काफ़ी है, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपने पास से देगा। عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتتب على زهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله آتاه أو مناه। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई अगर रस्सी लेकर इसमें लकड़ियों का गट्ठा बांधे और इसे अपनी पीठ पर लाद कर लाए तो दूसरे के पास जाकर सवाल करने से बेहतर है, मालूम नहीं वो इसे दे या ना दे। यानी हाथ की मेहनत करनी मांगने से बेहतर है। आप देखिए इतनी प्यारी मिसाल दी है ना कि इसके बाद तो वाकई बंदा कहता है मैं खुद मेहनत कर लूँ, मैं किसी से ना मांगूँ। وفي رواية عن زبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فياتي بخزمة الخطب على زهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक और रिवायत में कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अगर कोई लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए और इसे फ़रोख्त करे जिसकी वजह से अल्लाह ताला इसकी इज्जत व आबरू कायम रखे तो ये इसके लिए सवाल करने से बेहतर है कि लोग इसे दें या ना दें। क्या पता चला? हाथ से मेहनत करके कमाना बेहतरीन कमाई है, और मईशत के तीन असूल हैं। क्या क्या? ज़रात यानी ज़मीन से कुछ निकालें, तिजारत लेन देन का नाम है, और सनत व खिरफत यानी आप फैक्ट्री लगा लें, कारखाना लगा लें। इनमें पहला दर्जा ज़रात का है क्योंकि इसमें हाथ से मेहनत और तवक्कुल अल्लाह पर है, यानी अगर मौका हो तो ज़मीन से ही फसल लेनी चाहिए। عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حديرة خلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيابى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيابى أن يأخذه فلم يرزو حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. سمجھ آئی بات؟ ایک بات سن کر بھی ان کا دل کھل جاتا تھا. بعض دفعہ کئی دفعہ بات سنتے ہیں ہم پھر بھی سوچتے ہیں یہ ہمارے لیے عمل کی نہیں ہے. حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا, میں نے پھر مانگا تو بھی آپ نے دے دیا, میں نے پھر مانگا تو آپ نے مجھے پھر بھی دے دیا. یعنی ایسے لگا کہ آپ دیتے ہی جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا حکیم یہ مال سبز و شیریں ہے, جو شخص اس کو سخاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے اس کو برکت عطا ہوتی ہے. یعنی مال آئے اور ساتھ دل بھی کھلا ہو تو پھر تو برکت ہے, اور جو طمع کے ساتھ لیتا ہے اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی. ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر نہیں ہوتا, یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. نیز اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا سے چلا جاؤں. چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو وہ حضرت حکیم کو وظیفہ دینے کے لیے بلاتے رہے مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں ان کو بلا کر وظیفہ دینا چاہا لیکن انہوں نے انکار کیا, جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے حکیم کو ان کا حق پیش کیا مگر وہ مال غنیمت سے اپنا حق لینے سے انکار کرتے ہیں. الغرض حضرت حکیم رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ کے بعد جب تک زندہ رہے کسی سے کچھ نہ لیا. ضرورت کے بعد کسی دوسرے سے سوال کرنا حرام ہے. محنت مزدوری پر قدرت رکھنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے. البتہ بعض حضرات تین شرائط کے ساتھ گنجائش ڈالتے ہیں. کیا کیا ہیں وہ؟ نمبر ایک, اصرار نہ کریں, بس مانگ لے لیکن اصرار نہ کریں, اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں, اور جس شخص سے سوال کرے اسے تکلیف نہ دیں. تو اگر یہ شرائط نہ ہوں تو پھر تو یہ درست عمل نہیں ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اور اپنے ملکوں میں جو لوگ بیچارے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور سڑکوں پہ بیگرز اور ماسیاں, بعض دفعہ تو جان محال ہو جاتی ہے, اور بعض لوگوں کے اچھے خاصے گھر بار بن بھی جاتے ہیں لیکن چونکہ مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں. تو اگر یہ حدیثیں عام کی جائیں, دوسروں سے شیئر کی جائیں تو کتنوں کا بھلا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے, اور حقیقت میں قرآن اور سنت حدیث یہی وہ راستے ہیں جس سے آج ہمارے معاشروں کے بڑے بڑے مسائل بڑے آرام سے حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.